लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम पर चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम प्रकाशित किया। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करती जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, हमने एवंजेली गौडियम के 5वें अध्याय की शुरुआत की है, जो पवित्र आत्मा से पूर्ण सुसमाचार प्रचारकों का जिक्र करता है। सुसमाचार प्रचार करना ईश्वर के राज्य को विश्व में प्रकट करना है। हम सभी अपने जीवन के द्वारा जीवनदायी ईश्वर की सुसमाचार का प्रचार करने को बुलाए गए हैं और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं। हमारे जीवन के द्वारा अच्छे कार्यों का निष्पादन हम में व्याप्त अच्छाई का परिणाम नहीं, अपितु पवित्र आत्मा की प्रेरणा है, जहां वे हमें हृदय की गहराई में नेक कार्य करने को उत्प्रेरित करते हैं। श्रोताओं, हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि हम अपने जीवन को दूसरों के संग साझा करते और अपने को उदारता में देते हैं। हमें यह भी अनुभव करने की जरूरत है कि हर व्यक्ति हमारी सेवा के योग्य है। हर मानव ईश्वर की असीमित कोमलता का एक अंग है और हम उन्हें स्वयं लोगों के जीवन में उपस्थित पाते हैं। ईश्वर की विश्वसनीय प्रजा होना एक अद्भुत बात है। हम अपनी पूर्णता तब प्राप्त करते हैं जब हम दीवारें तोड़ देते हैं और हमारा दिल चेहरों और नामों से भर जाता है। श्रोताओं, द्वितीय अध्याय में हमने गहरी आध्यात्मिकता की कमी पर चिंतन किया, जो हमें निराशावाद, भाग्यवाद और अविश्वास की ओर अभिमुख करता है। कुछ लोग अपने को प्रेरिताई हेतु समर्पित नहीं करते हैं, क्योंकि वे यह सोचते हैं कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है और ऐसा करने हेतु प्रयास करना व्यर्थ है। वे सोचते हैं, यदि मैं यह देखता हूँ कि इसका कोई विशेष परिणाम नहीं होने वाला, तो मैं क्यों अपने को मिलने वाले आराम और खुशी से वंचित करूं? यह मनोभाव एक प्रेरिताई कार्य को असंभव बना देता है। यह केवल एक दुर्भावनापूर्ण बहाना है, जिसके फलस्वरूप हम अपनी आरामदेह स्थिति, सुस्तीपन, धुंधली असंतुष्टि और खोखले स्वार्थ में बने रहते हैं। यह स्वयं को विध्वंस करने वाला मनोभाव है, क्योंकि मानव आशा के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इसके बिना जीवन अर्थहीन और असहनीय हो जाएगा। यदि हम सोचते हैं कि चीजें नहीं बदलने वाली हैं, तो हमें यीशु ख्रिस्त के बारे में सोचने की जरूरत है, जिन्होंने पाप और मृत्यु पर विजयी पाई और वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में हैं। यीशु ख्रिस्त सचमुच में जी उठे हैं। हम इसे दूसरी तरह से देखें, यदि यीशु ख्रिस्त जीवित नहीं होते तो सुसमाचार की हमारी घोषणा व्यर्थ होती। सुसमाचार हमें बतलाता है कि जब पहले प्रेरित सुसमाचार की घोषणा हेतु गए, यीशु उनके संग कार्य करते और उनके संदेश को सुनिश्चित करते हैं। आज भी वही होता है। हम इसकी खोज करने हेतु इसका अनुभव करने को बुलाए गए हैं। यीशु ख्रिस्त जो पुनर्जीवित और ईश्वर की महिमा में हैं, हमारी आशा के स्रोत बनते हैं। वे हमें उन मददों से वंचित नहीं करेंगे जिनकी जरूरत हमें प्रेरिताई हेतु है, जिसे उन्होंने हमें सौंपा है। श्रोताओं, ख्रिस्त का पुनरुत्थान अतीत की एक घटना नहीं है, यह अपने में अद्भुत शक्ति को धारण करता है, जिससे हम दुनिया को भरा पाते हैं। जहां सारी चीजें अपने में मृत लगती हैं, वहां अचानक हम जीवन की निशानियों को फूटकर निकलता पाते हैं। यह अपने में एक अप्रतिशोध्य शक्ति है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि हम अपने चारों ओर अन्याय को देखते हैं, बुराई, उदासीनता और क्रूरता को भरा पाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि अंधकार के मध्य हम कुछ नई चीजों को उभर कर आता हुआ देखते हैं, और देर सबेर यह हमारे लिए फल उत्पन्न करता है। उजड़ी हुई भूमि पर जीवन फूट कर निकलता है, जो अपनी जिद्धि में भी अजय होता है। जीवन की परिस्थितियां अपने में कितनी भी अंधकार भरी क्यों ना हो, अच्छाई सदैव पुनः उभर कर आती और फैल जाती है। हर दिन हमारी दुनिया में सुंदरता नए रूप में जन्म लेती, यह इतिहास के तूफानों के माध्यम से परिवर्तन लाती है। हम मूल्यों को सदैव एक नए छुपे हुए रूपों में प्रकट होता हुआ पाते हैं, और मानव समय समय पर उन परिस्थितियों से ऊपर उठता है जो विनाशकारी दिखाई देती है। पुनरुत्थान की शक्ति ऐसे ही है, और जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं वे उस शक्ति के माध्यम बनते हैं। श्रोताओं, हम बहुत सी नई मुसीबतों को निरंतर हमारे मध्य उभर कर आता हुआ पाते हैं। असफलता का अनुभव और मानवीय कमजोरियां जो हम में बहुत अधिक दुख लाते हैं। हम सभी अपने अनुभव से इस बात से वाकिफ हैं कि कभी कभी एक कार्य हमारे लिए वह संतोष नहीं लाता जिसकी हम खोज करते हैं, जिसमें हम परिणाम को कम और परिवर्तन को धीमा पाते हैं, और यह हमारे लिए परित्याग करने का प्रलोभन लाता है। वही निराशा के कारण अपने हाथों को कुछ समय के लिए ढीला छोड़ देना हमारे लिए वैसा नहीं है मानो यह हमें हमेशा के लिए निराश करता हो। यह दीर्घकालीन असंतोष और एक उदासीनता का शिकार होना नहीं है जो आत्मा को सूखा कर देता है। हमारे लिए ऐसा भी हो सकता है कि हमारे हृदय संघर्ष से थक जाते हैं, क्योंकि अंततः हम अपने को अपने में उलझा पाते हैं। एक पद की चाह जो हमें पहचान, तालियां, उपहार और प्रसिद्धि प्रदान करती हो, ऐसी परिस्थिति में हम अपनी बाहों को शिथिल नहीं करते, लेकिन हम अपने में यह नहीं समझते हैं कि हम किस चीज की खोज कर रहे हैं। हम वहां पुनरुत्थान को नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सुसमाचार का अति सुंदर संदेश जिसे यह दुनिया हमें प्रदान करती है, हमारे लिए बहानों के ढेर में दब जाती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक पत्र एवंजली गौडियम पर एक चर्चा सुनी। हम इस पर आगे भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे। मां तेरे पास आके मन
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने इथियोपिया के सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। परंपरा के अनुसार 12 सितंबर को इथियोपिया में नया साल मनाया जाता है। पोप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से मंगलवार को लिखा, आज प्यारे इथियोपियाई लोग अपने परंपरागत नववर्ष मना रहे हैं। मैं पूरी जनता को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नए वर्ष में संत पापा की उम्मीद है कि इथियोपिया के लोगों को भ्रातृत्वपूर्ण मेल मिलाप और शांति की प्रचुर आशीष प्राप्त होगी। फ्रांसिसी शहर मर्सिले के कार्तिक माता मरियम से नौवीना प्रार्थना करते हुए भूमध्य सागर क्षेत्र की सभा हेतु पोप फ्रांसिस की आगामी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। संत पापा 22 और 23 सितंबर को भूमध्य सागर क्षेत्र की सभा में भाग लेने के लिए मर्सिले जा रहे हैं। भूमध्य सागर क्षेत्र में शांति के लिए प्रार्थना हेतु शुक्रवार 8 सितंबर को मर्सिले में 9 दिवसीय भक्ति प्रार्थना शुरू की गई, क्योंकि फ्रांसिसी महाधर्म प्रांत 22 और 23 सितंबर को पोप फ्रांसिस के स्वागत की तैयारी कर रहा है। नौबिना की शुरुआत कुंवारी मरियम के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू हुई। मर्सिले के महाधर्म अध्यक्ष कार्डिनल जो मार्क एवेलिन ने शहर के मेयर की उपस्थिति में मर्सिले के संत मरिया मेजर महागिरजाघर में ख्रिस्त्याग अर्पित किया। शुक्रवार को अपने उपदेश में कार्डिनल ने विश्वासियों से आग्रह किया कि वे अपने आप को सभी की सेवा में अर्पित करें, ताकि उन दोष रेखाओं पर जो आज भूमध्य सागर क्षेत्र में दरारें डाल रही हैं और जो बहुत से लोगों, गरीबों, वंचितों या अप्रवासियों को प्रभावित करती हैं, हम दुनिया के गुनगुनेपन पर भाईचारे की मुस्कान को खिलने में मदद कर सकेंगे। तैयारी में की जा रही नौबिना प्रार्थना शनिवार 16 सितंबर को प्रकाश शोभा यात्रा और नोटरडम देला गार्ते में माता मरियम से प्रार्थना के साथ समाप्त होगी। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में नोटरडम देला गार्ते महागिरजाघर के रेक्टर फादर ओलिवर स्पिनोसा ने नौबिना के लक्ष्यों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, यह नवेना पौत्रात्मा से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि ये बैठकें वास्तव में अपने सभी आध्यात्मिक फल दे सकें। उन्होंने कहा, हम अक्सर भौतिक तैयारी के बारे सोचते हैं, जबकि मन और दिल की तैयारी के लिए भूल जाते हैं। सभा में 5 भूमध्य सागर तट के कुल 70 धर्माध्यक्ष और 70 युवा प्रतिभागी शामिल होंगे और जिसका समापन संत पापा फ्रांसिस 23 सितम्बर को फारो महल में करेंगे। पोप फ्रांसिस ने लीबिया में विनाशकारी बाढ़ के कारण हुई भारी तबाही और हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका पर गहरा दुख व्यक्त किया है और सभी प्रभावित लोगों को अपनी प्रार्थनाओं एवं निकटता का आश्वासन दिया है। लीबिया के पूर्वी हिस्से में बाढ़ के कारण हुए जान माल के भारी नुकसान और विनाश के बारे जानकर पोप फ्रांसिस को गहरा दुख हुआ। उन्होंने बाढ़ के कारण मौत के शिकार लोगों की आत्माओं की अनंत शांति और शोकित प्रियजनों के लिए प्रार्थना का आश्वासन दिया है। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन के माध्यम से लीबिया के प्रेरित राजदूत महाधर्म अध्यक्ष साविय होन ताइफाई को प्रसिद्ध संदेश में संत पापा ने उन्हें अपनी संवेदना प्रकट की है। रॉयटर न्यूज एजेंसी के अनुसार तूफान डानियल भूमध्य सागर पार करते हुए लीबिया पहुंचा, जिससे देश के पूर्वी शहर डरना का लगभग 1/4 हिस्सा नष्ट हो गया है, क्योंकि तूफान में बांध टूट गए हैं। केवल डेरना शहर में करीब 1000 शव पाए गए हैं। अधिकारी मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। रेड क्रॉस ने कहा कि बाढ़ में देश भर में 10,000 लोगों के लापता होने की आशंका है। अपने ताज संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने घायलों और उन सभी लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है जिन्हें अपने प्रियजनों को खोने का भय है और जो बचाव और राहत सहायता प्रदान कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के लिए सांत्वना, शक्ति और दृढ़ता के दिव्य आशीर्वाद का आह्वान किया है। मोरक्को में बचाव दल शुक्रवार के विनाशकारी भूकंप के मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एटलस पर्वत की तराई पर बसे गांव में 6.8 की तीव्रता से आया भूकंप आधी सदी से भी अधिक समय में मोरक्को का सबसे घातक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप शुक्रवार को मध्यरात्रि से कुछ ही समय पहले हुआ, जिससे बचने के लिए पूरे क्षेत्र के लोग दौड़कर सड़कों और खुले स्थानों पर निकले। घर टुकड़े टुकड़े हो गए, मलबे और धूल के बादल उड़ गए। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 2,476 लोग घायल हुए हैं। भूकंप के झटके फिर लगने के डर से लोग अब भी अस्थायी तंबू में रात गुजार रहे हैं। कई लोग भोजन और पानी पीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोरक्को की सरकार ने पुष्टि दी है कि उसने ब्रिटेन, स्पेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से सहायता स्वीकार कर ली है। तुर्की, इसराइल और ट्यूनिशिया ने भी सहायता करने का वादा किया है। इटाली का आर्थिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ जुप्पी ने बर्लिन में संत इजिदियो द्वारा आयोजित शांति के लिए प्रार्थना सभा पर पत्रकारों के सवालों का उत्तर देते हुए कहा कि शांति के रास्ते अप्रत्याशित हैं, आइए हम एक बड़े गठबंधन पर काम करें। संत इजिदियो द्वारा आयोजित शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना सभा की विषय वस्तु है शांति की साहसिकता। कार्डिनल जुप्पी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना सभा में भाग लेते हुए कहा कि यूक्रेन में स्थिति कई महीनों से बहुत बुरी चल रही है, कई कठिनाइयां हैं और यह हमेशा याद रखना है कि कौन आक्रामक है और किस पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के लिए समाधान पाना बहुत जरूरी है। सभा में विश्व भर के 40 देशों के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो 1986 में पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा वांछित असीसी में धर्मों की प्रार्थना की विरासत का हिस्सा है। कार्डिनल जुप्पी ने पोप फ्रांसिस द्वारा सौंपे गए मिशन के संबंध में पत्रकारों के सवालों का उत्तर दिया, जिसके तहत वे यूक्रेन, रूस और अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने कहा, हम हमेशा उचित और सुरक्षित शांति की ओर आगे बढ़ना जारी रखेंगे। कार्डिनल ने दोहराया कि सच्ची शांति थोपी नहीं जा सकती और शांति के लिए अपना रास्ता निर्धारित करने में यूक्रेन वासियों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, शांति हर एक जन के प्रयास की मांग करती है, लेकिन यह किसी के द्वारा थोपी नहीं जा सकती। नाइजीरिया के कफांचन धम प्रांत स्थित संत रफाइल पल्ली के खाना कमरे में अज्ञात हमलावरों ने आग लगा दी, जिससे एक सेमिनरी छात्र की मौत हो गई। कफांचन धम प्रांत के धर्मदर्श जूलियस याकूबू कुंडी ने जानकारी दी कि 25 वर्षीय सेमिनरी छात्र नामान डलनामी की मौत संत रफाइल पल्ली में हमले के दौरान हुई। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।